ஆகம் தேவம் கம்சுச்சானீரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரு. மங்கீர நூபூரணம் நவரத்ன காஞ்சி ஸ்ரீஹார கேசரி நகத் பிரதியந்திர சங்கம் திருஷ்டியார்த்திஹாரி மசுகந்து விராஜமானம் வந்தே கலிங்கு தஞ்சா தத் பாலகூலம். ஆஜ மகாமகிமாமயி ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி ஹை. வைவஸ்வத மன்வந்தரி அஷ்டாவிஷ சதுர்யுகே த்வாபர கே அந்த மே பாத்ர மாஸ கீ கிருஷ்ணாஷ்டமி கே தின் பிருத்வீ கோ யே மஹான் சௌபாக்ய ப்ராப்த ஹுவா. அகில விஷ்ணு பிரம்மாண்ட கே லியே ஆஜ கா யே மங்களமய தின் மகான் மகிமாமய மகான் மதுமய ஔர் மகான் மமதாமய ததா பரம தன்ய ஹை. ஆஜ கே ஹி தின் அசுரோ கே அத்யாச்சார சே உத்பீடித் காமனா வாசனா துக்க தைன்ய ஔர் தாரித்ர்ய ஆதி கே தீவிர காரண சே சந்த்ரஸ்த ஔர் க்ஷத விக்ஷத் பவர் முக்தா எவம் ஜரபாஜ சே ஜர்ஜரித் ஔர் பிரேம சுதார சுதாரா சே ரஹித் சர்வதா சுஷ்க ஜகத் மே சாமத சிந்து ஷடைஸ்வர்ய பூர்ண சர்வலோக மகேஸ்வர ஸ்வயம் பகவான் கா ஆவிர்பாவ ஹுவா தா. பகவான் கே அவதார மே க்யா ஹேது ஹை யே பகவான் ஹி ஜானதே ஹை. பரந்து பிரதான ஹேது பிரதீத் ஹோதா ஹை பகவான் கீ அப்னே கனீபூத பரமானந்த ரஸ லீலா விக்ரஹ கோ பிரகட் கர்னே கீ மங்களமயி இச்சா. வைசே சாதுஜனோ கா பரித்ராண துஷ்டோ கே விநாஷ கே த்வாரா பூமி கா பார ஹரண ஔர் தர்ம சம்ரக்ஷண யா தர்ம சம்ஸ்தாபன கே மங்களமய காரிய பீ ஸ்ரீ பகவான் கே அவதீர்ண ஹோனே மே காரண பதலாய கே ஹை. ஸ்வயம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண நே ஹி கீதா சதுர்த்த அத்யாய கே ஆட்டவே ஸ்லோக மே கஹா ஹை பரித்ராணாய சாதூனாம் விநாசாய துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. சாது புருஷோ கே பரித்ராண துஷ்டோ கே விநாஷ ஔர் தர்ம சம்ஸ்தாபன கே லியே மே யுக யுக மே உத்தம ரீதி சே பிரகட் ஹோதா ஹூ சம்பவாமி. பர் கேவல் யஹி காரண நஹி ஹை பகவான் நே ஹி இஸ்கே பஹலே சட்டே ஔர் சாத்வே ஸ்லோக மே குச்ச பின் சங்கேத் பி கியா ஹை. அஜோ பிரசன்னதே ஆத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரே பிரசன் பிரகிருதிம் ஸ்வாமதிஷ்டாய சம்பவாம்யாத்ம மாயையா யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்லானிர்பவதி பாரத அபியுத்தானம் தர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருதாம்யஹம். மை அஜன்மா அவ்யயாத்மா ஔர் சமஸ்த பூதோ கா ஈஸ்வர ரஹதே ஹுவே ஹி அப்னி ப்ரகிருதி கோ ஸ்வீகார கர்கே அப்னி யோக மாயா சே அர்த்தாத் யோக மாயா கோ சாத் லேகர் உத்தம ரீதி சே பிரகட் ஹோதா ஹூ. ஜப் ஜப் தர்ம கீ க்லானி ஔர் அதர்ம கா அபியுத்தான ஹோதா ஹை தப் தப் மை அப்னே கோ பிரகட் கர்தா ஹூ. இன்மே சட்டே ஸ்லோக மே அஜன்மா அவிநாசிய சர்வபூத மகேஸ்வர ஹோகர் பி ஜன்ம லேனே அந்தர்தான ஹோனே ஔர் சோட்டே சே பராதீன பாலக பன்னே கா சங்கேத கர்கே விருத் தர்மாஸ்ரயி ஸ்வயம் பகவான் நீ கே பூர்ண ஆவிர்பாவ கி பாத் கஹி கயி. ஔர் சாத்வே ஸ்லோக மே சதுபதேஷ் கே த்வாரா தர்ம க்லானி ரூப அதர்ம கே புத்தான கா நாஷ் கர்னே வாலே ஆச்சாரியாவசார கி அத்வா காம கலுஷித் விஷய சேவன ரூப அதர்ம கே அபியுத்தான கோ துவம்ச கர் பரம தியாகமய மதுரத்தம் கோபி பிரேம தர்ம கே சம்ஸ்தாபன கர்னே கி ஓர் சங்கேத் கியா கயா. भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, अतएव उनके द्वारा सभी लीलाओं का सुसंपन्न होना इष्ट है। इसके अनुसार उनके प्राकृत्य के भी विभिन्न कारण हो सकते हैं और वे सभी सत्य हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राकृत्य का काल था भाद्रपद की अंधियारी अष्टमी की अर्धरात्रि और स्थान था अत्याचारी कंस का कारागार। पर स्वयं भगवान के प्राकृत्य से काल देश आदि सभी परम धन्य हो गए। 5000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं, परंतु प्रतिवर्ष वही पवित्र भाद्रमास, वही कृष्ण पक्ष और वही शुभ अष्टमी आती है और पृथ्वी के परम सौभाग्य की नवीन स्मृति जागृत करके चली जाती है। आज भी इस दिन हम बहिर्मुखी जीवों को न दिखने पर भी पृथ्वी के वक्षस्थल पर एक विलक्षण आनंद का महानृत्य होता है और आज भी सौभाग्यवान भक्तजन इस नित्य स्मरणीय महान मंगलमयी तिथि की पूजा, जन्मोत्सव का आयोजन, जन्माष्टमी व्रत का सेवन करके धन्य होते हैं। और आज भी प्रेमी भक्त अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर के आविर्भाव का दर्शन भी कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उस आविर्भाव के समय का बड़ा ही सुंदर वर्णन दिव्य रस सागर हुए श्री सुखदेव जी ने किया है। आज इस समय इस आविर्भाव के काल में हम उसी का प्रसादन करें और मन ही मन ऐसा ही चिंतन और ध्यान करें। वे कहते हैं अब सर्वदिन काल परम शोभन, काल समस्त शुभ गुणों से युक्त परम शोभन हो गया। ये काल नित्य ही जगत के सृजन संहार में लगा रहता है, इससे जगत में कोई उससे प्यार नहीं करता। आज बना कल ये बिगाड़ देगा, परंतु काल के आधार भगवान उसकी कभी उपेक्षा नहीं करते। वे काल के निमंता होकर भी काल में ही प्रकट होते हैं और काल में ही अंतर्ध्यान भी हो जाते। काल को भगवान यदि ये सौभाग्य न प्रदान करते तो शायद उस बेचारे के दुख का पार नहीं रहता। आज जब काल को ये पता लगा कि परिपूर्णतम स्वयं भगवान मेरे अंदर प्रकट हो रहे हैं, उसके आनंद की सीमा नहीं रही और अपने समस्त गुणों को प्रकट करके वो परम शोभन बन गया। उसने प्रत्येक ऋतु तथा प्रत्येक समय विशेष से चुन चुन कर सभी सदगुणों को धारण कर लिया और ब्रचन रूप से सुसज्जित हो उठा। बसंत ऋतु का मल समीर, एकल का पूजन, भ्रमर का गुंजन, आम्र में नवीन मौर का उदय, अशोक और चंपा का मुक्त हास्य, वर्षा तालीन कदम्बानिल, शरद की स्वच्छता और प्रसन्नता, हेमंत की मालती, शिशिर के कुंड कुसुम, दिवस की कमलिनी, रात्रि की कुमुदिनी, प्रातः काल का देव पूजन, कर्म प्रवृत्ति, मध्यान्ह का पवित्र प्रभु सेवा आरूप, आजीवन का आजीविका कर्म, सायान्न का देव पूजन तथा सात्विक आनंदोत्सव, निशा का शांत भाव, रात्रि शेष का उत्साहपूर्ण जागरण, सतयुग की तपस्या, त्रेता का यज्ञ, द्वापर की परिचर्या और कलयुग का श्री हरिनाम संकीर्तन इत्यादि काल के भंडार में जहाँ जो सद्गुण थे सभी को अपने में धारण करके वो सर्वांग सुंदर हो गया। अतः सर्वगुणों के काल परम शोभन निर्णयक्षम शांत्यक्ष ग्रह कारक रोहिणी नक्षत्र था। तो आकाश में सभी नक्षत्र ग्रह तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। सूर्यादि नवग्रह अश्विनी आदि 27 नक्षत्र जन्म संपत आदि तारे उग्र शांत वक्र उच्च नीच आदि विभिन्न भावों से काल के सृजन संहार कार्य में सहायता किया करते हैं। कर्मफलानुसार काल जब जिसको जैसा कुछ सुख दुख भुगताना चाहता है ये भी तब उसके लिए वैसे ही उग्र शांत वक्र आदि बनकर काल का सहयोग दिया करते हैं। आज परिपूर्णतम भगवान श्याम सुंदर के शुभागमन के समय वे सभी अपनी उग्रता वक्रता का परित्याग करके शांत हो रहे हैं और कोई वक्र गति से, कोई अतिचार गति से और कोई महातिचार गति से अपने अपने उच्च स्थानों में से होकर श्री भगवान का अभिनंदन करने में संलग्न है। उस समय यही नक्षत्र था, भगवान ने उसको अपने जन्म के नक्षत्र के रूप में स्वीकार करके परम धन्य कर दिया। ऋषि सुखदेव जी ने धूनी नक्षत्र का स्पष्ट नाम न लेकर अगर जन्मरक्षण इस वृत्तार्थ पद के द्वारा रोहिणी का नाम संकेत किया, जिसका साधारण जीवों की भांति कर्म फल रूप जन्म नहीं होता उनको अजन कहते हैं। उन भगवान के नाभिकमल से जिनका जन्म होता है वे ब्रह्मा अजन जन्मा कहलाते हैं। वे ब्रह्मा जिस नक्षत्र के विष्ठाता है उसका नाम है, उसका नाम होता है अजन जन्म नक्षत्र अर्थात रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि रोहिणी के विष्ठाता ब्रह्मा है। शास्त्रों में कहा गया है कि अपने या अपने स्वजनों का जन्म नक्षत्र प्रकट नहीं करना चाहिए। अतएव श्री सुखदेव जी ने भी अपने परम प्रिय श्री श्याम सुंदर के जन्म नक्षत्र को गोपन रखने के लिए स्पष्ट रोहिणी न कहकर ऐसा कहा। जहाँ भगवान का भगवान श्री कृष्ण का नाम गुण कीर्तन होता है वहाँ से भी सब ताप ताप विघ्न बाधाएं दूर भाग जाती हैं। वे वहाँ समीप नहीं रह सकती बरम विविध प्रकार से सुलक्षण आज उठते हैं। पर स्वयं भगवान जहाँ पृथ्वी की पीड़ा मिटाने के लिए निर्म होते हैं वहाँ वार तिथि नक्षत्र योग आदि के अत्यंत शुभ सूचक होने में कौन सी आश्चर्य की बात है। जगत का प्रत्येक कार्य काल दिशा और देश के अधीन है, इसी से जगत में काल दिशा और देश का विचार करके ही कार्य किया जाता है। यद्यपि श्री भगवान की दिव्य लीला में काल दिशा और देश की कोई बाध्य बाधकता नहीं, वे स्वयं काल दिशा और देश के नियंता हैं, तथापि वे जब धराधाम में अवतीर्ण होते हैं तब काल दिशा और देश पर कृपा करके उनके साथ अपना पवित्र संबंध देकर उन्हें धन्य और कृतार्थ कर देते हैं। इसीलिए आज काल की भांत दिशा और देश भी समस्त सद्गुणों से सुशोभित हो रहे हैं। दिशक प्रसिद्धि गगनम निर्मल उदयम दसों दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश में तारे जगमगा उठे, किसी भी दिशा में कहीं तनिक भी मलिनता नहीं रह गई, सर्वत्र परमानंद पूर्ण स्वच्छता छा गई, सभी जगपति परम प्रफुल्लित आनंद पूर्ण हृदय से अपने स्वामी के शुभागमन का अभिनंदन करने के लिए समस्त दिशाओं को सुसज्जित करके दिव्य बदनियों के साथ हाथों में अर्घ्य पात्र लेकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। गगन में तारे जगमगा उठे, मानो अपने अपने अनंत अंग पात्रों में स्तर स्तर पर हीरों के पुष्प सजाकर विष्णु पद में अंजलि अर्पण करने की इच्छा से खड़े हो गए। काल और दिशा की भांति देश भी मंगल श्रृंगार से सुसज्जित हो गया। भू भूस्व सभी देशों में आनंद की बार आ गई। मंगलमय के मंगल आगमन से सभी देश आनंद मंगल परिपूर्ण हो गए। मई मंगल भूष्ट फिर ग्राम बजा करा, पृथ्वी के सभी बड़े बड़े नगर छोटे छोटे गांव अहिरों की बस्तियां रत्नों की खाने आनंद मंगल की क्रीड़ा भूमि बन गई। विविध हेतुओं की अवधारणा करके नगरों के मार्ग परिष्कृत तथा सुगंधित हो गए। गलियों के प्रासादों में रोशनी जगमगाने लगी, शंकर ध्वनि होने लगी, बाजे बजने लगे, जगह जगह पूजा स्तुतियां होने लगी, मंत्रोच्चारण की ध्वनि उठने लगी, खाने रत्नों को स्वयं बाहर फेंकने लगी, नाना प्रकार के नाना कारणों से सर्वत्र आनंदमय के शुभागमन की आनंद धारा बह चली। पृथ्वी के समस्त स्थानों को आनंद मुखरित करके आनंदमय का शुभागमन आनंद मूर्तिमान होकर नद नदी सरोवर अरण्य पर्वत आदि में सभी जगह व्याप्त हो गया। नद्य प्रसन्न सलीला रजा जल रुश्रिया, नदियों का जल निर्मल हो गया। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल उठे। गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा गोदावरी गोमती सरस्वती कावेरी शोण सिंधु आदि नद नदियों का मटमैलापन दूर हो गया। उनको मानो अपने जन्म स्थान पर्वत के उस गुप्त गह्वर से ऐसा प्रांत समाचार मिल गया कि वे अपने कल कल नाद से उसे पटभूमि के कानों में सुना रही हूँ और उत्ताल तरंगों के रूप में मानो भुजाओं को उठाकर नाचती हुई बड़े वेग से दौड़ी हुई समुद्र को ये आनंद संवाद सुनाने के लिए दौड़ चल। सरोवरों में असंख्य कमलों की पंक्तियां खिल उठी। नाद जीव जैसे स्त्री पुत्र परिवार घर शरीर को छोड़कर अन्य किसी से संबंध नहीं रखता, उसी प्रकार ये बिचारे सीमा आबद्ध सरोवर अपनी सीमा में ही आबद्ध रहा करते हैं। नाद जीव पर जब श्री कृष्ण की कृपा होती है तब वह मायाबद्ध रहता हुआ ही जैसे श्री कृष्ण प्रेमी भक्तों की बात सुनता है और उन भक्तों के द्वारा होने वाली भगवत सेवा के आनंदोच्छ्वास को देखता है, वैसे ही सीमाबद्ध सरोवरों को भी आज श्री कृष्ण कृपा प्राप्त हुई। किसी से वे कमलों के विकास के बहाने असंख्य कानों से नद नदियों की आनंद पूर्ण कलकल ध्वनि सुन रहे हैं और खुली आंखों से उनके आनंद उच्छ्वास को देख रहे हैं। नदियों को जो सौभाग्य किसी अवतार में नहीं मिला वह श्री कृष्ण अवतार में प्राप्त हुआ। इसी अवतार में श्री कालिंदी जी भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पदरानी बनी और अवतार लेते ही श्याम सुंदर ग्वाल बालों तथा गोपांगनाओं को साथ लेकर कालिंदी में क्रीड़ा करने लगे। इन बातों को सोचकर नदियां प्रसन्न हो गई और इस अवतार में भगवान कालिय दमन करके कालिया सरोवर को विशीर्ण बना देंगे। इस बात को सोचकर सरोवरों ने कमलों के बहाने अपने हृदयों को ही श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया। मानो वे कह रहे हैं हमारे जीवन का सारा विष अब दूर हो जाएगा। जुजा शुक्र सन्नाद सबका बनरा गया है। वनों में वृक्षों के पत्तियां विविध वर्ण के सुगंधित पुष्पों से लग गई और सुकृत का भी पक्षी मधुर ध्वनि करते हुए चहक उठे तथा मधुपान मत्त भ्रमरों के गुंजार से सारी वनभूमि मुखरित हो गई। निर्जन अरण्य की शोभा उस समय भला कौन देखता, परंतु उन्हें दूसरों को शोभा थोड़ी दिखानी है। उन्हें तो पूर्ण रूप से सभी भट कर स्वांत सुखा अपना आनंद प्रकट कर रहा है। किसी से उन सबने भी अपनी सजावट में कोई कमी नहीं रखी। शाल कमाल काल आम अशोक चंपा मौल श्री बजवा स्वच्छ आदि सभी ने अपने पुराने पत्ते फेंक दिए और नए नए कोमल पल्लवों को धारण कर लिया। मोर मोर फूट निकले, मोरों के बीच बीच में पुष्पों का विकास हो गया और उन पुष्पों के गुच्छे मृदुमंद पवन के महिलोरों के साथ नाच नाच कर आनंद प्रकट करने लगे। मालती आदि की लताएं बच्चों की शाखा पोशाखाओं से निपट कर वह मगर कुसुम हास्य का विस्तार करने लगी। जूही चमेली आदि पत्र शून्य होकर केवल विकसित सुमनों से ढक गई। रात्रि के समय सोए हुए भ्रमर मानो स्वप्न में किसी गुप्त परमानंद संवाद को पाकर सहसा जाग उठे और मधुर गुंजार करते हुए पुष्पों के पास जा जाकर आनंद समाचार का कारण पूछने लगे। शाखाओं पर घोंसलों में सोए हुए पक्षीगण भ्रमरों की झंकार से जागृत होकर अपनी कमरीय काकली से ब्रह्म वन प्रांत को निनादित करते हुए अकस्मात उदय हुए आनंद का कारण जानने के लिए इधर उधर वृक्षों पर रहने लगे। आम्र वृक्ष ने असमय मोर देख कर कोयलों के आनंद की सीमा नहीं रही। वे बड़े वेग से उड़कर शाखाओं पर पहुंच गई और पंचम स्वर से कान छेड़कर आनंद में मग्न हो गई। इस प्रकार सर्वत्र मान आनंद के पूर्ण विकास से समस्त अरण्य सर्वथा आनंद भवन बन गया। यो भगवान श्री कृष्ण का शुभागमनानंद आकाश पृथ्वी और जल को आनंद मत बनाकर और वायु के निकट पहुंचा। यदि वायु सुख स्पर्श है परम पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से सबको सुखदान करती हुई बहने लगी। वर्षा ऋतु के घोर जल वर्षण से वायु में आर्द्रता और बीच बीच में होने वाली कई धूप से उसमें कुछ उच्चता आ गई थी। तब श्री भगवान के शुभागमनोत्सव के कारण बसंत के अंत में जो मले पवन निर्वासित कर दिया गया था वह अपने निर्वासन दंड से मुक्त होकर लौट आया और वर्षाकालीन उस नातशीतोष्ण वायु के साथ मिल गया। अब दोनों ने मिलकर खोज कर जहाँ जहाँ उन्हें सुगंध प्राप्त हुई ले लेकर अपने सारे अंगों पर लगा ली और आनंद मत होकर वे वृक्षों के मस्तकों रमणियों के अंचलों तथा प्रासाद शिखरों की पटाखाओं के साथ पूजा करने लगे। श्री भगवान आ रहे हैं। इसलिए उस समय वायु में रज को लेकर धूल को लेकर खेलना छोड़ दिया। उस सात्विक आनंद के साथ वे खेलने लगे। इसी कारण अपने स्पर्श से वे सबको सुख देने वाली बन गई। ये जब श्री गोविंद के शुभागमनानंद से पृथ्वी मंगलमयी जल कमला आच्छादित वायु सुगंध संपन्न और सुख से हो गई और निर्मल आकाश तारा मालाओं से जगमगा उठा तब अग्नि भी निश्चेष्ट नहीं रह सकी। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पंचभूत मिलकर ही तो जगत का सारा काम करते हैं। आज जब श्री कृष्ण का शुभागमन महोत्सव आज कृष्ण के शुभागमन महोत्सव के समय इनमें से चार आनंदोन्मत्त हो जाए और अग्नि बाकी रह जाए ये कैसे संभव है। अग्नि अस्तुराशी नाम शांता शत्र समुद्रता गुजों के होम कुंडों की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी वे चल उठी। उन्हें जलाना नहीं पड़ा। लकड़ी के अंदर से अपने आप ही प्रज्वलित होकर वे दक्षिणा करते हुए जल नाचने लगी। श्री गोविंद के शुभागमन के महानंद में उनके लिए भक्त की आहुति मंत्र पाठ अथवा ईंधन की आवश्यकता नहीं हुई। वे अपने आप ही प्रकट होकर होम मंडपों को आलोकित करने लगी। श्री कृष्ण का शुभागमन महानंद बाह्य जगत को प्रमुखित और प्रमुखित करके अब अंतर जगत में जा पहुंचा। मनाश्यासन प्रसन्ना साधु नाम अश्रद्रोही साधु का चित्त सहसा प्रसन्नता से भर गया। भगवत भक्तों के हृदय सहसा अजानित असंभावित और अप्रत्याशित आनंद से परिपूर्ण हो गए। कहां से किस लिए कैसे इस परमानंद में आकर उनके हृदय में प्रवेश किया इसका उन्हें पता ही चला। वे आनंद में भर कर पुलकित हो गए। उनके नेत्रों से प्रेमानंद के सुधा बिंदु झरने लगे और वे सब इस आनंद में के नित्य सुख रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। असुर निकंदन श्री कृष्ण चंद्र के शुभागमन की सूचना पाकर असुर के अत्याचार से पीड़ित देवताओं के हृदयों में भी शांति और आशा का संचार हो गया। असुर समुदाय अति भयानक मूर्ति सहज हिंसा प्रवृत्ति के कारण सभी के अप्रिय होते हैं, इसलिए असुर के अतिरिक्त जीवन मात्र असुर द्रोही हूँ। उस सिद्धांत से साधु प्रकृति के सभी असुर द्रोही जीव प्रसन्न हो गए, पर भगवान के भक्तों का सुख तो अगर नहीं है। बादल से गिरी हुई जल की बूंद मेघ प्रिय चातक को जैसी सुविधाएं होती है वैसी अन्य किसी को नहीं होती। ये सत्य है कि दूसरों की भी प्यास बुझती है, पर वे केवल मेघ के जल की ही प्रतीक्षा नहीं करते। उनको नदी नदी सरोवर झरने बहुत जगह जल दिखाई देता है, कहीं से भी लेकर वे अपनी पिताशा शांत कर सकते हैं। खुशी भगवत शरणाश्रित कृष्ण आनंद भक्तों के आनंद का सोच के केवल श्री भगवान के चरणार बिंद ही जो भोराश्रित हैं, भगवत शरणाश्रित नहीं है, उनके सुख के लिए स्त्री पति पुत्र परिवार जन धन जमीन विषय वैभव मान सम्मान प्रशंसा यश और पद अधिकार आदि अनेक वस्तुएं हैं। इसीलिए वे श्री भगवत चरणारविंद पुत्र सके दिव्य आनंद का पूर्ण साधन नहीं कर पाते। फिर जैसे बादलों का निर्मल जल भी यदि गंदे पूरे भरे स्थानों में गिर जाए तो वो निर्मल नहीं रहता, इसी प्रकार भगवान का परमानंद हित निर्मल होने पर भी जिन लोगों का जीवन कामना वासना भोगाशक्ति भोग सुखास्ता क्योंकि गंदे पूरे से भरा है, वे उस परमानंद को भी विषानंद बना लेते हैं। जैसे अत्यंत उत्तप्त स्थान पर गई हुई जल की बूंदे प्रतिष्ठ जाती हैं तथा ताप और भी बढ़ जाता, वैसे ही अविश्वास भोगाशक्ति और बहिर्मुखता से उत्तप्त जीवों के समीप पहुंचा हुआ भगवत संबंध जनित आनंद बिंदु भी उनकी भगवत विमुखता के कारण तुरंत उनके लिए मुक्त हो जाता होता और उन बहिर्मुख तथा अविश्वासी जीवों का ताप बढ़ जाता है। आज श्री भगवान के शुभागमन का पूर्ण प्रकाश होने से श्री भगवत शरणाश्रित अनंत भक्तों के हृदय में आनंद का जो महान प्रवाह बहने लगा, वो आनंद भोग कामना वासना बड़े हृदयों के लोगों को नहीं मिला। प्राकृतिक शोभा संपत्ति की विपुलता को देखकर वे विषानंद का अनुभव करने लगे और कंसार सिंह की बहिर्मुखता वेगाशक्ति और विश्वास से भरे उत्तप्त हृदयों में ये विषय आनंद भी नहीं ठहर सका, गर्म का ताप और भी बढ़ गया। श्री गोविंद का ये शुभागमन महानंद पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि नदी नदी वन पर्वत आदि सभी को आनंद प्लावित कर भक्तों के हृदयों में श्री भगवत चरणों के प्रत्यक्ष प्राप्त होने के मान सुखाशा का मधुर संगीत गाकर विषय जीवों के हृदयों को विषयानंद से भरकर और बहिर्मुख जीवों के मनों को भीषण भय से प्रकंपित कर अब स्वर्ग में जा पहुंचा। जय माने जनो तस्मिन मेरे बिंद गयी अजन्मा भगवान के जन्म आविर्भाव के समय स्वर्ग से मैं देवताओं की बिंदु में बुझी। भगवान का शुभागमन व आनंद जब भूवर्लोक से ऊपर उठकर स्वर्ग लोक में पहुंचा तो एक ही साथ असंख्य देव बिंदुओं ने बजकर अपने मधुर नाद से समस्त स्वर्ग को छा लिया। स्वर्ग में प्रतिदिन नित समय पर देवधातुकों के द्वारा ब्रह्मताल रुद्रताल आदि तालों से देव बिंदुओं बजाई जाती हैं। परंतु आज इस महानंद में सर्वथा स्वतंत्र होकर वे सब अपने आप ही बजने लगे। अनाचारिंद गंभीर मध्य निशाखी सभ्यता को भंग करके समस्त स्वर्ग को जनाभित और आनंद मुखरित करती हुई वे धुंदुबिया बिना ही बजाए बजू थी। देश सदा के संगीत रिशार्द हाहू चुम्बुर आदि गंधर्व और किम पुरुषगण धुंदुबियों के इस मधुर नाग से सहसा जागृत हो रहे और कैमानंद पूर्ण हृदय से श्री भगवान का गुणगान करने लगे। उन्हीं के साथ साथ आनंदमत सिद्ध चारणगण भी सेवन करने लगे। बहु किन्नर गंधर्वा सुष्टु सिद्ध चारणा गंधर्व तथा किन्नरगण देवराज इंद्र तथा देवताओं का अंग बढ़ाने के लिए ही देवसभा में मधुरतान छेड़ा करते हैं। सिद्ध और चारणों का जीवन भी देवताओं के स्तुतिगान में बीतता है। पर आज देवेंद्र वांश चरण अरविंद सौभाग्यवती भूमि पर प्रकट होने जा रहे हैं, अतः वे भी उसके अनवचनीय महानंद से मुक्त होकर अपने स्वभाव सिद्ध शांत स्निग्ध मधुर कंठ से भी दक्षिण मधुरता सुंदरपन को प्राप्त होकर श्री भगवान का अभिनंदन करने लगे। इस प्रकार गंधर्व किन्नर सिद्ध चरणों के मधुर सात्विक गीतों को सुनकर दे सभा के नित्य से श्रांत और अमृत पान से प्रमत्त विद्याधरिया और अक्षराएं भी नवीन उत्साह के आनंद जागृत होकर नए रूप में नृत्य करने लगी। आज नए रूप में नृत्य करती विद्याधरी अक्षर होगी उर्वशी मीन कारंबाग स्वर्ग की अक्षराएं और विद्याधरियों की सारी दिन भर की नाचगान की थकावट दूर हो गई और वह प्राकृत सर्वानंद से परिपूर्ण होकर स्वर्ग के विलास नृत्य की सारी तालों को भूल कर श्री गोविंद गुणगान में प्रमुख गंधर्व किन्नरों की गोविंद गुणगान की शुद्ध सत्यमयी तालों में ताल मिलाकर मगन नृत्य करने लगी। इस प्रकार सारा स्वर्ग गान तथा नृत्य की मधुरतम ध्वनि से परिपूर्ण हो गया। देवताओं के समस्त स्वर्ण प्रसाद मुखर्जी हो उठे। सभी देवता सहसा जग कर आशीर्चकित नेत्रों से देखने लगे और आनंद मग्न होकर मंत्र मुग्ध की भांति परमानंद की प्रेरणा से अपने अपने निवास स्थानों को छोड़कर तुरंत मुंडन मन में जा पहुंचे तथा स्वर्ग के कारिगर सुमनों को सुन सुनकर पृथ्वी पर बसाने लगे। ईश्वर मनये देवा सुमन सुमदा मिलता बड़े बड़े देवता तथा मुनिगण आनंद में भरकर पृथ्वी के सौभाग्य की सराहना करने लगे। श्री भगवान के शुभागमन से आज पृथ्वी नानांग श्रीराज से सुसज्जित है। उसी आनंद के लिए स्वर्ग में आई है। अतः पृथ्वी स्वर्ग आगत जड़ी पृथ्वी स्वर्ग से भी बढ़कर सौभाग्यमयी हो गई। तभी तो श्री भगवान उस पर अवतीर्ण हो रहे हैं। इसी पृथ्वी के सौभाग्य का अभिनंदन करने के लिए देवताओं ने पृथ्वी पर नंदन कानन के देव सुमनों की वर्षा आरंभ कर दी। अवश्य इस अप्राकृत महानंद का यथार्थ स्वरूप कोई नहीं जानता, पर चुपके से आकर इस महानंद ने सबको आनंद प्रमत्त कर लिया। चौदह भुवन आनंद से नाच उठे। इस आनंद के उच्छ्वास से सत्य सिंधुओं में भी आनंद क्षोभ हो गया। वे भी रघुबंद गर्जना करते हुए उत्ताल तरंगों की भंगिमा दिखा दिखाकर नृत्य करने लगे। मंदम मंदम जलधरा जगद्गुरु अनुसागरम समुद्र की कन्या लक्ष्मी नारायण की पत्नी है। मानो इसी संबंध सूत्र से ससुर न हो गए। गौरव मंडित होकर सिंधु गर्जना के रूप में घोषणा कर रहे हैं। चार दिन के सुभागमन से समस्त विश्व ब्रह्मांड परमानंद में बह रहा है। ये हमारे अपने ही है, हमारे जवानी है। इस प्रकार समुद्र का गर्म छूट दिक प्रांतवर्ती मेघ समुदाय भी मुखर होम थे। उन्होंने भी मधुमधु गर्जना करके कहा, रे हमारा उनका तो वर्ण ही है, हम भी नील श्याम और वे भी नील श्याम, अच्छे वो हमारे सखाई हैं। श्री भगवान के संबंध गौरव तथा वर्ण साम्य के गौरव से प्रमत्त जलनिधि तथा जलज निकर अपने अपने सौभाग्य की गाथा गाने लगे। ऋषि थे गाय माने जनार्दन देव की देव रूपी यान विष्णु सर्व दुहाशय आविराशी पुष्कल। इसी समय विराजमान सर्व दुहाशय देव की देव रूपी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे 16 कलाओं से पूर्ण चंद्र का उदय हुआ। देवकी जी को देव रूपी कहा गया। इसका भाव यह है कि उनका दिव्य शरीर था। भगवान नित्य स्वप्रकाश है, उन स्वप्रकाश विचित्र दिव्य लीला में भगवान का नाम देव है। उनका रूप श्री विग्रह सच्चिदानंदमय है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह उन देव भगवान की भांति जिसका रूप है उसे देव रूप कहते हैं। अच्छा ऐसा जिनका देव रूप है वे श्री देवकी जी देव रूपिणी है। उनका देह हमारी तरफ प्राकृत नहीं शुद्ध सच्चिदानंदमय है, तभी उनके सामने पुत्र के रूप में सुप्रकाश भगवान का आविर्भाव होगा। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, विद्युत आदि ज्योतियाँ जो जगत को प्रकाशित करती हैं, कोई भी स्वप्रकाश नहीं है। भगवान ने स्वयं का अर्जुन विदादित्य वचन थे जो जगत भाषण के खिलम ये चंद्रस्वादन करते जो विद्यमानकम चंद्र सूर्य अग्नि आदि की जिस ज्योति से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है वह तो मेरी अंगद ज्योति है। यहाँ तक कि भगवान का सच्चिदानंदमय परम धाम भी स्वप्रकाश श्री चंद्र आदि की ज्योतियाँ वहाँ नहीं, जगत भाषण के सूर्य न शशांको न तारक रनिवर्तन के तद्धाम परम तो स्वप्रकाश परम धाम जिसको प्राप्त है अपने संसार में लौटना नहीं पड़ता। सूर्य चंद्रमा और अग्नि की ज्योति से प्रकाशित नहीं है। श्रुति कहती है चले भाग मनुभाग सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति जो प्रकाश की भगवान की अंग ज्योति से ही सूर्य चंद्र आदि सब ज्योतिर्मय है और उनकी अंग छटा से ही संपूर्ण विश्व प्रकाशित है। इस प्रकार श्री भगवान ही सत्य प्रकाशक है, भगवान का कोई प्रकाशक नहीं। पिता माता अपने पुत्र का जगत में प्रकाश करते हैं, इसी से वे पुत्र के प्रकाशक कहे जाते हैं। श्री भगवान के पिता माता जो भगवान को जगत में प्रकट करते हैं वे भी भगवान के प्रकाशक है। श्री भगवान सुप्रकाश है, अतः वे अपनी सुप्रकाशी का शक्ति के अतिरिक्त हम किसी से प्रकाशित नहीं हो सकते। अतः वसुदेव देव भगवान के पिता माता भी भगवान के सच्चिदानंद में ही सुप्रकाश का शक्ति है, वे उन्हीं के शुद्ध सत्य की घनीभूत मूर्ति प्राकृत जीवों के भांति न तो भगवान माता गर्भ में आते और न कर्म परवश उनका जन्म होता है और न उसका उनका विग्रह ही भिन्न उनसे भिन्न शांत रोचक होता है। वे भगवान स्वेच्छा स्वेच्छा में जीव बटु से प्रकट होते हैं, वे जगत पिता है, सबके जन्म जाता है, उन्हीं से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का उदय होता है। परंतु जो भगवान को प्रतिरूप से स्नेह करते उन राशन प्रेम युक्त भक्तों को श्री भगवान माता पिता के रूप में स्वीकार करके उन्हें धन्य करते हैं। भगवती देवकी अनन्य राशन प्रेम से श्री भगवान को प्रतिरूप से प्राप्त करना चाहती थी, इसीलिए उनमें राशन प्रेम उनके उनमें वासनी प्रेम को और अपने प्रति पुत्र भाव को सुदृढ़ करने के लिए आविर्भाव से पूर्व भगवान ने अपने चिंत शक्ति स्वजन मनमोहिनी माया से देवकी में गर्भ के लक्षण उत्पन्न कर दिए। वास्तव में गर्भ नहीं था, इसी से उन्होंने समझा कि मेरे गर्भ से ही पुत्र उत्पन्न हुआ है। इसी से वे पूर्ण वात्सल्य के वात्सल्य से पुत्र रूपी भगवान का लालन पालन करती है। इस अगाध वात्सल्य प्रेम सागर में भगवान की सारी भगवत्ता डूब जाती है। जहाँ ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित वात्सल्य प्रेम होता है वहाँ बीच बीच में भगवत्ता की सुरमा भी होती है, फिर स्थायी नहीं होती। श्री देवकी जी वसुदेव जी का वात्सल्य प्रेम ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित था, इसी में समय समय पर उन्हें अपने पुत्र श्री कृष्ण में भगवान का बोध भी हुआ। इसी से लालन पालन के साथ ही वे स्तुति प्रार्थना भी करते थे। शुद्ध प्रेम तो वृंदावन में था और उसकी बड़ी मधुर अभिव्यक्ति वृंदावन लीला में देखी जाती है। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों में व्याप्त विष्णु हैं और वे ही भक्त के प्रेमानुरूप क्षुद्र बालक रूपधारी हैं। सदा ही बृहद सदा ही क्षुद्र है, वृद्ध धर्म उनमें युगमत रहते हैं। अनोरणीया महतो महियान वे ही सबके हृदयों में व्याप्त अंतर्यामी है, वे ही सर्वातीत है और वे ही सर्व गुणमय लीलामय घनश्यामती मूर्ति श्री भगवान है। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनवंतरावतार, अंशावतार, कलावतार, आदेशावतार, प्राभवावतार, वैभवावतार और परावस्थावतार सभी उन्हीं से होते हैं। वे ही सब अवतारों के अवतारी साक्षात स्वयं भगवान है। समस्त अवतार उन्हीं के अंतर्गत है, उन्हीं में सब सम्मिलित हैं, क्योंकि वे ही सब कुछ है। भविष्य मनमंत्र के अष्टविंश चतुर्युग के द्वापर में प्रकट होने वाले ये भगवान सबकी प्रतिष्ठा सबके अवतारी सर्वमय सर्वातीत सर्वरूप निर्गुण सगुण अचिंता अनंत गुण समुद्र अखिल प्रेम साम सिंधु स्वर्ण कला पूर्ण ऐश्वर्य संपन्न अनुपादान रहित जीव सच्चिदानंद घन विग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान है। साथ ही वे पूर्ण आदर्श मानव कर्म योगीश्वर लोक नेता कर्म राजनीतिज्ञ धर्मोपदेष्टा आचार्य सौंदर्य माधुरी निधि सर्व चित्ताकर्षक मुनि मन मोहन आत्माराम गणाकर्षी मधुर प्रेमी जनवत्सल और राधा राध्य है। जिस किसी दृष्टि से इनको देखा जाए सभी में इनके परिपूर्ण दर्शन होते हैं। विषयाशक्ति और भोग वासना में फंसे हुए मायामोह के सदाघात से जर्जरित और स्पंदनहीन जगत के प्राणी कभी भी समुचित ना प्राप्त करके विश्वास के नेत्रों को खोल कर एक बार देखें तो उन्हें पता लगेगा कि भाद्र मास की इस कृष्णाष्टमी को पाकर पृथ्वी स्वर्ग की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हो गई। समझे या न समझे पृथ्वी के जीव इस सड़क पूज्य तिथि तथा इस मध्य निशा को पाकर धन्य है। पृथ्वी धन्य है, पृथ्वी के जीव धन्य है, पृथ्वी के आकाश वायु अग्नि धन्य है, पृथ्वी के नदी नदी सरोवर धन्य है, पृथ्वी के पर्वत धन्य है, पृथ्वी के सूर्य चंद्र धन्य है, पृथ्वी के जीव मात्र धन्य है और जिस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी है वो ब्रह्मांड धन्य है और इस स्थिति को मानने वाले आप सब लोग धन्य हैं। और इन सभी के प्रति मैं साष्टांग प्रणाम करके मैं भी धन्य होता हूँ। भगवान का आविर्भाव होने वाला है। उपयुक्त वर्णन के अनुसार हम सभी आनंद श्रृंगार से अपने मनों को सुसज्जित कर उनके स्वागत की प्रतीक्षा करें। अंत में मैं इस पुरानी प्रार्थना को दोहराकर भगवान श्री श्याम सुंदर के चरण रज को प्रणाम करता हूँ। आप भी चाहें तो मेरे साथ ही मन ही मन ये प्रार्थना कर सकते हैं। जाहि देख चाहत नहीं कछु देखन मन मोर बसे सदा मोरे दृगन सोई नंद किशोर। जाहि देख चाहत नहीं कछु देखन मन मोर बसे सदा मोरे दृगन सोई नंद किशोर। तन मन सब लिपते रहे नित प्रियतम के अंग गुप्त मुक्ति की कल्पना करे न ये सुख भंग। तन मन सब लिपते रहे नित प्रियतम के अंग गुप्त मुक्ति की कल्पना करे न ये सुख भंग। भूल जाए सुध जगत की भूले घर की बात हियसो हिय लागे रहे बिनु बाधा दिन रात। भूल जाए सुध जगत की भूले घर की बात ये सो ही लागो रहे दिन बाधा दिन रात। इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा बने श्याम के धाम सब में सदा बसे रहे प्रियतर मधुर ललान। इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा बने श्याम के धाम सब में सदा बसे रहे प्रियतर मधुर ललान। वो आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। ये भगवान के आगमन की शुभागमन की प्रतीक्षा में प्रकृति ने जो कुछ किया हम लोग भी ऐसे प्रतीक्षा करने लगे तो भगवान आ जाए भला। अब ये भगवान का शुभ जन्म है। उसके बाद फिर कल आगे की बात होनी चाहिए कर दी
जी। भाई जी के इस प्रवचन का कैसेट संख्या है 36 और शीर्षक है श्री कृष्ण जन्माष्टमी प्रवचन संवत 2017।